नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। नेथन डब्ल्यू पायल की स्ट्रेंज प्लैनेट 144 पृष्ठों की चित्रात्मक हास्य पुस्तक है, जो उनके लोकप्रिय वेब कॉमिक पर आधारित है।
इसका परिवेश देखने में एक दूरस्थ ग्रह है, लेकिन वहाँ के नीले बालरहित प्राणी मानवों जैसे ही घर चलाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, पढ़ते हैं,
काम करते हैं और विशेष दिनों को मनाते हैं।
अंतर यह है कि वे हर परिचित वस्तु, भावना और सामाजिक रिवाज को अत्यंत शाब्दिक, लगभग वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं। इसी भाषाई दूरी से हास्य पैदा होता है। किताब किसी एक लगातार कथा या नायक के बजाय छोटे चित्र केंद्रित प्रसंगों का संग्रह है।
जन्मदिन, परिवार में नए सदस्य का आना, पालतू जीव, शिक्षा, स्वास्थ्य, शौक और जीवन पर विचार जैसे विषय इसमें जीवन चक्र की रूपरेखा बनाते हैं। पायल का उद्देश्य मनुष्य को व्यंग्य का कठोर लक्ष्य बनाना नहीं, बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदतों को अपरिचित दृष्टि से दिखाना है।
इसलिए यह पुस्तक हल्की, स्नेहपूर्ण और विचारोत्तेजक कॉमिक रचना के रूप में काम करती है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा।
सबसे पहले, अत्यंत शाब्दिक भाषा से रोजमर्रा की दुनिया को नया बनाना स्ट्रेंज प्लैनेट का केंद्रीय उपकरण भाषा है।
प्राणी मुहावरों, सामाजिक संक्षेपों और प्रचलित नामों को सहज मानने के बजाय वस्तुओं के कार्य और रूप के आधार पर वर्णित करते हैं। मोजे उनके लिए पैरों पर चढ़ने वाली कपड़े की नलिकाएं हैं, गुब्बारे लोचदार सांस के जाल हैं और धूप में त्वचा का रंग बदलना स्टार डैमेज है।
पाठक पहले इन वाक्यों को अटपटा पाता है, फिर उनके पीछे छिपी सामान्य मानवीय क्रिया को पहचानता है। यही दो चरणों वाली पहचान हास्य का मुख्य स्रोत है।
यह तकनीक केवल शब्दों की अदला बदली नहीं है, यह दिखाती है कि दैनिक भाषा कितनी परंपरा, सुविधा और साझा संदर्भ पर निर्भर है।
मनुष्य किसी वस्तु को उसके वास्तविक गुणों से नहीं, बल्कि उपयोग में आए हुए नाम से तुरंत समझता है।
जब नाम हट जाता है तो साधारण क्रियाएं भी विचित्र लगने लगती हैं। पुस्तक इस दूरी का उपयोग करके पिज्जा, घर की सजावट, जन्मदिन या धूप सेंकने जैसी चीजों की अंतर्निहित अजीबता सामने लाती है।
कॉमिक का चित्र और संवाद साथ मिलकर अर्थ बनाते हैं। दृश्य अक्सर पूरी तरह परिचित होता है, जबकि संवाद उसे अनोखा बना देता है।
इसीलिए पाठक को जटिल विज्ञान कथा का ज्ञान नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी दिनचर्या पहचाननी होती है।
हालांकि लगातार एक ही भाषाई युक्ति कुछ पाठकों को दोहरावपूर्ण लग सकती है, छोटे प्रसंगों का प्रारूप इसे सहज, तेज और साझा करने योग्य बनाए रखता है।
दूसरा, जीवन के छोटे पड़ावों को एक स्नेहपूर्ण मानवीय क्रम में रखना। किताब की रचनात्मक संरचना जीवन के अलग अलग पड़ावों को छूती है।
प्राणियों का जन्मदिन, भैया बहन का मिलना, परिवार बनना, पालतू जीव की देखभाल, औपचारिक शिक्षा, कामकाजी जीवन, स्वास्थ्य, शौक और विस्तृत परिवार जैसे प्रसंग एक व्यापक जीवन क्रम रचते हैं। यह क्रम किसी उपन्यास की तरह कारण और परिणाम से बंधा नहीं है,
फिर भी पाठक को यह एहसास देता है कि सामान्य जीवन बहुत सी छोटी रस्मों और दोहराए जाने वाले संबंधों से बनता है।
पायल इन घटनाओं को असाधारण नाटक में नहीं बदलते। उनका ध्यान इस बात पर है कि मनुष्य साधारण मौकों को अर्थ कैसे देता है। जन्मदिन पर ग्रह की स्थिति को याद करना, किसी जीव को परिवार में शामिल करना या काम और आराम के लिए अलग समय बनाना बाहर से देखने पर औपचारिक और अजीब लग सकता है, भीतर से यही काम अपनापन, निरंतरता और पहचान देते हैं। कॉमिक इस विरोधाभास को बिना उपदेश के पकड़ती है।
जीवन चक्र की यह व्यवस्था पुस्तक को केवल इंटरनेट चुटकुलों के संकलन से कुछ अधिक बनाती है। अलग अलग पट्टियां एक साथ पढ़ने पर परिवार, देखभाल और उम्र बढ़ने के अनुभवों पर हल्का चिंतन प्रस्तुत करती हैं। प्राणियों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं अक्सर सरल और ईमानदार हैं, इसलिए पुस्तक यह संकेत देती है कि हमारी सामाजिक रस्में तर्क से पूरी तरह समझाई न जा सके, फिर भी वे संबंधों को व्यक्त करने के उपयोगी माध्यम है।
तीसरा, विज्ञान कथा का परिवेश, परलक्ष्य मानव सामाजिक व्यवहार, स्ट्रेंज प्लैनेट में नीले बालरहित प्राणी और दूसरे ग्रह का दृश्य विन्यास विज्ञान कथा की पहचान देते हैं, लेकिन इसका वास्तविक विषय भविष्य की तकनीक,
अंतरिक्ष, राजनीति या अपरिचित सभ्यता का निर्माण नहीं है। यह पृथ्वी जैसे घरों और मानवीय व्यवहारों को ऐसी दृष्टि से देखती है जैसे उन्हें पहली बार कोई बाहरी पर्यवेक्षक समझने की कोशिश कर रहा हो। यह दूरी लेखक को बिना कटुता के उन नियमों पर प्रश्न करने देती है जिन्हें लोग स्वाभाविक मान लेते हैं। मिसाल के लिए, मेहमानों के आने से पहले घर व्यवस्थित करना, किसी के घर की प्रशंसा करना, विशेष अवसरों पर तय तरीके से प्रतिक्रिया देना या अपने सामान को छिपाकर साफ सुथरे स्थान का आभास देना, ये सभी व्यवहार सामाजिक रूप से परिचित हैं।
पर जब इन्हें शाब्दिक भाषा में कहा जाता है तो उनमें मौजूद प्रदर्शन संकोच और पारस्परिक अपेक्षा उजागर होती है। पाठक हंसता है क्योंकि वह इस व्यवहार में खुद को पहचानता है। इस दृष्टि का एक महत्वपूर्ण गुण इसकी करुणा है। प्राणी मानवों को मूर्ख या पाखंडी घोषित नहीं करते, वे बस समझने का प्रयत्न करते दिखते हैं। परिणाम स्वरूप हास्य व्यंग्यात्मक होने पर भी अपमानजनक नहीं बनता। विज्ञान कथा यहाँ पलायन का माध्यम नहीं, निरीक्षण का उपकरण है। दूसरे ग्रह की आड़ पुस्तक को परिचित जीवन पर सुरक्षित दूरी से सोचने देती है। यही कारण है कि इसके प्रसंग सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट होने के बावजूद व्यापक पाठकीय पहचान पैदा करते हैं। चौथा, चार पैनलों की संक्षिप्त रचना में पहचान और भागीदारी। स्ट्रेंज प्लैनेट की अधिकांश कॉमिक पट्टियां संक्षिप्त, अक्सर चार पैनलों वाली संरचना में काम करती हैं। इस रूप में जगह सीमित होती है, इसलिए हर चित्र, विराम और वाक्य को तुरंत अर्थ देना पड़ता है। पाइल सामान्यतः एक परिचित परिस्थिति से शुरुआत करते हैं, प्राणियों की असामान्य शब्दावली से उसे उलटते हैं और अंत में ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं जो पाठक की पहचान को पूरा करती है। चुटकुला लंबे स्पष्टीकरण से नहीं, पाठक द्वारा अर्थ जोड़ने से बनता है। यह भागीदारी पुस्तक की पठनीयता का प्रमुख कारण है। पाठक को लगातार यह अनुमान लगाना पड़ता है कि प्राणी किस वस्तु, मुहावरे या सामाजिक संकेत की बात कर रहे हैं। जब उत्तर स्पष्ट होता है तो उसे अपनी भाषा और आदतों की नई व्याख्या भी मिलती है। इस प्रकार पढ़ने का अनुभव निष्क्रिय नहीं रहता। चित्रों की शांत रंग योजना और सरल आकृतियां संवाद की विचित्रता को उभरने देती हैं, जिससे दृश्य अव्यवस्थित होने के बजाय सहज लगता है। संक्षिप्तता का लाभ यह है कि पुस्तक को क्रम से या बीच बीच में खोला जा सकता है। प्रत्येक पट्टी स्वतंत्र प्रभाव रखती है, जबकि संग्रह में विषयों की विविधता बनी रहती है। इसकी सीमा भी यही है। यह रूप जटिल कथानक, गहरे चरित्र विकास या लंबे भावनात्मक परिवर्तन के लिए नहीं बना है। फिर भी पाइल अपने चुने हुए प्रारूप में सटीक है। वे छोटे अवलोकनों को इतना स्पष्ट बनाते हैं कि वे व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ साझा सांस्कृतिक अनुभव जैसे लगते हैं। अंत में हास्य के भीतर संबंध, देखभाल और अस्तित्व पर हल्का चिंतन। पुस्तक की लोकप्रियता केवल विचित्र शब्दों पर आधारित नहीं है। इसके प्रसंगों में साथीपन, पारिवारिक जिम्मेदारी, पालतू जीवों से लगाव, शरीर की असुविधाएं, थकान, काम और खाली समय जैसे भावनात्मक विषय बार बार आते हैं। प्राणी इन स्थितियों को असामान्य नाम देते हैं, लेकिन उनकी जरूरतें और प्रतिक्रियाएं पहचानी हुई हैं। यही अंतर पुस्तक को ठंडे निरीक्षण से बचाता है और उसमें गर्माहट लाता है। विशेष रूप से रिश्तों के प्रसंग दिखाते हैं कि मनुष्य प्रेम और देखभाल को अक्सर अप्रत्यक्ष भाषा, छोटे अनुष्ठानों और रोज की मदद से व्यक्त करता है। जब कोई परिचित प्रेम वाक्य शाब्दिक रूप में बदलता है तो वहां स्यास्पद भी लगता है और भावना की तीव्रता भी सामने आती है। इसी तरह स्वास्थ्य या जीवन पर चिंतन के दृश्य बताते हैं कि साधारण शरीर और समय की सीमाएं सभी प्राणियों की साझा चिंता है। पाइल कोई व्यवस्थित दर्शन या समाधान प्रस्तुत नहीं करते, उनका योगदान अधिक विनम्र है। वे पाठक को यह अनुभव कराते हैं कि जीवन की कुछ असंगतियां ही उसे मानवीय बनाती हैं। ग्रह को घूमते हुए देखना, किसी परिवारजन के साथ रहना या किसी छोटे जीव की अजीब आदत पर प्रतिक्रिया देना, इन सब में अर्थ खोजने की मानवीय प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए हास्य के बाद बचने वाली भावना केवल चतुराई की नहीं, बल्कि साधारण जीवन के प्रति कोमल स्वीकृति की है। निष्कर्ष में, इट्स स्ट्रेंज प्लैनेट उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जिन्हें चित्रात्मक हास्य, छोटे अवलोकन और रोजमर्रा के व्यवहार पर हल्का लेकिन सटीक चिंतन पसंद है। वेबकॉमिक पढ़ने वाले, विज्ञान कथा के सहज रूप में रुचि रखने वाले और ऐसे उपहार की तलाश करने वाले पाठक भी इसे पसंद कर सकते हैं जिसे थोड़े समय में पढ़ा जा सके। यह पुस्तक गहरे कथानक या विस्तृत काल्पनिक संसार की अपेक्षा से नहीं पढ़नी चाहिए। इसका बल छोटे दृश्यों, पहचान के क्षणों और भाषा की चतुर पुनर्व्याख्या में है। व्यावहारिक स्तर पर यह पाठक को अपनी बोलचाल, घरेलू आदतों और सामाजिक रस्मों को नई नजर से देखने का अवसर देती है। बौद्धिक लाभ किसी औपचारिक सिद्धांत में नहीं, बल्कि भाषा और सामान्यता के संबंध को अनुभव करने में है। जो चीजें स्वाभाविक लगती हैं, वे अक्सर साझा परंपरा के कारण स्वाभाविक लगती हैं। पुस्तक उस परंपरा को थोड़ी देर के लिए हटाकर देखने देती है। इसी श्रेणी की अनेक हास्य कॉमिक्स त्वरित पंचलाइन या व्यंग्य पर निर्भर करती हैं। नेथन डब्ल्यू पाइल की विशिष्टता यह है कि उनका हास्य दृश्यात्मक सादगी, अत्यंत शाब्दिक संवाद और भावनात्मक कोमलता को एक साथ रखता है। प्राणी दूर के ग्रह के हैं, फिर भी उनके अनुभव अपने लगते हैं। यह विरोधाभास पुस्तक को केवल मीम जैसे चुटकुलों का संग्रह नहीं रहने देता। यह साधारण मानवीय जीवन की विचित्रता को स्वीकार करने वाली, बार बार खोली जा सकने वाली कॉमिक बन जाती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं नेथन डब्ल्यू पाइल, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।